दोपहर की धूप अब कमरे की खिड़कियों के बाहर ठिठक सी गई थी। शामली अपने कमरे में अकेली थी। सुबह से ही जैसे शरीर ने साथ छोड़ दिया हो, कंधों में बोझ, आंखों में जलन और मन कहीं बहुत दूर भटक रहा था। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और धीरे धीरे बिस्तर की ओर बढ़ी। कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा हो। वो बिस्तर पर लेट गई, बस लेटने भर के लिए। लेकिन जैसे ही उसकी पलकों ने एक दूसरे को छुआ, अंधेरे के भीतर एक तस्वीर उभर आई। कल रात, कार, ठंडी हवा और फिर वो दृश्य जो उसने खुद नहीं देखा था, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने साफ साफ चलने लगा। विश्वनाथ उसे गोद में उठाए हुए। शामली की सांस हल्की सी अटक गई। उसने करवट बदली, जैसे उस ख्याल से भागना चाहती हो, लेकिन वो तस्वीर पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। मधु के शब्द हल्के मजाक में कहे गए अब उसके मन में गूंज रहे थे। बड़े ठाकुर ने आपको अपनी बाहों में उठाया था। उस पल उसने उस बात को रोक दिया था, सुनना नहीं चाहा था, लेकिन अब वही बात उसके भीतर धीरे धीरे फैल रही थी। मैं क्यों सोच रही हूं ये सब, उसने आंखें बंद किए किए ही खुद से कहा। उसके होंठ हिले, पर आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कमरे को भी ना सुनने देना चाहती हो। उसे याद नहीं था कि कार से कमरे तक का सफर कैसा था। उसे याद नहीं था कि उसे कैसे लिटाया गया, और शायद यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। अगर याद होता तो शायद इतनी बेचैनी ना होती। उसके सीने में हल्की सी जकड़न हुई, शर्म या कुछ और, वो तय नहीं कर पा रही थी। उसने आंखें खोल दी और छत की ओर देखने लगी। पंखा धीरे धीरे घूम रहा था, उसके हर परिक्रमा के साथ जैसे समय भी चक्कर काट रहा हो। ये तो बस एक एहसान था, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। मैं नींद में थी, थकी हुई थी, कोई भी ऐसा ही करता। लेकिन मन ने तुरंत जवाब दिया, क्या कोई भी? उसका दिल जरा तेज धड़क गया। वो उठकर बैठ गई, हाथों की उंगलियां आपस में उलझ गईं। नहीं, उसने खुद से सख्ती से कहा, ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन फिर एक और सवाल, और ज्यादा तीखा, तो फिर आजकल विश्वनाथ बार बार याद क्यों आते हैं? वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई और कमरे में टहलने लगी। खिड़की के पास जाकर पर्दा ठीक किया, जो हवा से थोड़ा हिल गया था। उसे सीधा करते हुए उसके हाथ कुछ देर कपड़े पर रुके रहे, जैसे वहीं कहीं मन भी अटका हो। जब भी वो पास होते हैं, उसने बुदबुदाया, सब कुछ अलग क्यों लगने लगता है? आवाज में डर था, खुद से डर। उसे याद आया उनकी आवाज का ठहराव, उनकी मौजूदगी का सुकून, और वो नजर जो कभी सवाल नहीं करती लेकिन बहुत कुछ देख लेती है। नहीं, उसने सिर झटका, ये सब तो प्यार में होता है। फिर खुद ही रुक गई। प्यार? उस शब्द ने उसे जैसे अंदर से हिला दिया। लेकिन मैं तो, उसकी आवाज भर्रा गई, मैं तो आर्यन से, वाक्य पूरा नहीं हो पाया। वो जानती थी आर्यन से जो जुड़ाव था वो अब किसी और रूप में सामने आ चुका है। वो रिश्ता अब डर बन गया था, बोझ बन गया था। लेकिन ये जो एहसास था, ये डर नहीं था, और यही बात उसे सबसे ज्यादा असहज कर रही थी। नहीं, ये वो नहीं है, उसने खुद को फिर समझाया, ये सिर्फ कृतज्ञता है, आदत है, सम्मान है। वो कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक चली गई, तकिए ठीक किए, चादर के किनारे फिर से खींचे जबकि वो पहले से ही ठीक थे, पर्दे फिर हवा से हिले। इस बार उसने उन्हें जरा ज्यादा कसकर थाम लिया। बस, उसने धीमे से कहा, मुझे ये सब भूलना होगा। लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। हर बार जब वो भूलने की कोशिश करती, कोई ना कोई छोटी सी बात याद आ जाती। कभी उनकी चुप्पी, कभी उनकी चिंता, कभी वो सहज सा सवाल, थक तो नहीं गई? शामली बिस्तर के पास खड़ी रह गई, हाथ ढीले पड़ गए। ये सब ठीक नहीं है, उसने खुद से कहा, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसने आंखें बंद की, जैसे किसी अनदेखी रेखा के इस बार खड़े विचारों को रोकना चाहती हो। कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज थी और हवा में हिलते पर्दों की सरसराहट। वो वहीं खड़ी रही, थकी हुई, उलझी हुई, अपने ही मन से जूझती हुई। दोपहर ढल रही थी और शामली जानती थी ये उलझन आज यहीं खत्म नहीं होने वाली। वो धीरे धीरे बिस्तर के किनारे बैठ गई। थकान अब सिर्फ शरीर में नहीं, सोच में भी उतर आई थी। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, जैसे खुद से छुप जाना चाहती हो। मैं मजबूत हूँ, उसने खुद से कहा, मुझे अपने हालात पता हैं। लेकिन दिल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस भारी सा रह गया। हवा से पर्दा फिर हिला। इस बार उसने उठकर उसे ठीक नहीं किया। उसे लगा कुछ चीजों को बार बार ठीक करने से वो सच में ठीक नहीं हो जाती। वो वापस लेट गई, आंखें बंद की, शायद नींद आ जाए, शायद सोच थम जाए। कमरे में सब कुछ शांत था, लेकिन शामली के भीतर अब भी बहुत कुछ चल रहा था। शाम ढलने लगी थी, खिड़की से आती रोशनी अब सुनहरी नहीं रही थी, उसमें हल्का सा धूसरपन उतर आया था। शामली अलमारी के सामने खड़ी थी। दरवाजा खुला हुआ, भीतर करीने से टंगे कपड़े और उसके हाथ एक एक करके उन्हें छूते हुए रुक रहे थे। उसने सफेद रंग की वो शर्ट निकाली, उंगलियां अपने आप खन गईं। ये, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, ये इन्हें पसंद है। उसे ठीक ठीक याद था, विश्वनाथ ने कभी कहा नहीं था, बस एक बार पहनते हुए देखा था। प्रेस की हुई शर्ट, सीधी कॉलर, बिना किसी शिकन के, उसी दिन उसने मन ही मन नोट कर लिया था। उसने शर्ट को बिस्तर पर फैलाया, फिर पैंट, जो शाम के वक्त उन पर अलग ही जचता था। आज यही पहनेंगे, उसने धीमे से कहा, जैसे कोई फैसला सुनाया हो। स्त्री ऑन की, हल्की सी भाप उठी। जैसे जैसे स्त्री कपड़े पर चल रही थी, उसके चेहरे पर एक अनजानी सी शांति उतरती जा रही थी। हर क्रीज को सीधा करते हुए उसके भीतर भी कुछ कुछ सुलझ रहा था। उसे एहसास नहीं था कि उसके होंठ लगातार मुस्कुरा रहे थे। वो मुस्कान जो ना किसी से साझा की गई थी, ना खुद से पूछी गई थी, बस थी। विश्वनाथ जी को प्रेस के कपड़े अच्छे लगते हैं, उसने खुद से कहा, तो आज ये कपड़े पहनेंगे, इन्हें ठीक से प्रेस कर देती हूँ। उस आवाज में कोई औपचारिकता नहीं थी, बस अपनापन था। स्त्री रखते वक्त उसने कपड़ों को फिर से देखा, जैसे कोई अपने मनपसंद आदमी को दूर से देख लेता है। कोई चाह नहीं, कोई दावा नहीं, बस ध्यान। जब सब कपड़े तय होकर तैयार हो गए तो उसने उन्हें सावधानी से एक तरफ रख दिया। उस पल भी उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, जैसे वो खुद आईने में देखती तो शायद पहचान भी ना पाती।